मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज प्रारंभिक परीक्षा सप्ताह का अंतिम दिन और लेक्चर का चौथा लेक्चर है, लेकिन इससे पहले कि इसकी मैं शुरुआत करूं, एक दो घटनाओं के बारे में या कह लीजिए खबरों के बारे में, तथ्यों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहली खबर यह है कि आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि जो हमारी थोक महंगाई की दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब पिछले 8 सालों से भी वह अधिक हो गई है और यह बढ़कर हो गई है 7.39%। 2 महीने पहले भी इसमें वृद्धि हुई थी, वृद्धि होनी शुरू हो गई थी, और पिछले महीने जो वृद्धि हुई थी मार्च में, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। देखिए, होता क्या है कि अभी कोरोना के कारण लोगों की कमाई खत्म सी हो गई है, घट गई है, और ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। इसे ही कहते हैं मूड़ मुड़ाए और ओले पड़े। कमाई खत्म हो गई है और महंगाई बढ़ गई है, तो लोगों के सामने कितना बड़ा आर्थिक संकट धीरे धीरे पैदा होता जा रहा होगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये तथ्य आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक अच्छी बात ये थी कि पिछले साल इसी समय जब कोरोना महामारी फैलना शुरू हुआ था, तो महंगाई की दर जो है हमारी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। और जिसमें महंगाई की बात कर रहा हूँ, ये थोक महंगाई की दर की बात कर रहा हूँ। सामान्यतः ये माना जाता है कि थोक महंगाई की दर से अधिक वृद्धि खुदरा महंगाई की दर में होती है, क्योंकि वहां तो छोटी छोटी चीजें होती है, और जो ज्यादा जरूरत की चीजें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो खुदरा महंगाई में स्थान पाते हैं, थोक महंगाई में स्थान उन्हें नहीं मिल पाता है। तो यह एक प्रकार से भयावह आंकड़ा है, आप ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल प्रोवाइड कर रहा हूं, और उसमें उन्होंने एक प्रश्न उठाया है, वो आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। इसके तहत जो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 51 है उसकी चर्चा उन्होंने की है, और 51 की का जो एच है, 51(1) का एच, जिसे हम हिंदी में ज कहेंगे, उसकी बात उन्होंने कही है। सिविल सर्विस की तैयारी करने का एक यह भी बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा पैटर्न होता है। जैसे मैंने जो 51 की बात कही, ये मूल कर्तव्य है, 51A, जिसे हिंदी में हम कहेंगे 51(k), ये मूल कर्तव्य की बात करता है। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो मूल कर्तव्य के बारे में भी पढ़ेंगे, और कौन कौन से कर्तव्य हैं उन्हें आप सिलसिलेवार याद कर लेंगे, और आपको लगेगा कि ये चैप्टर तैयार हो गया, और चैप्टर तैयार हो भी जाता है। अब आप उसे सीमेंटेड कैसे करेंगे, उसे मजबूत कैसे बनाएंगे, या यूं कह लीजिए कि इतने सारे जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनमें से अभी आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा उपयोगी है, काम का है, इसका चयन आप कैसे करेंगे। तो इसका चयन इस तरीके से होगा कि मैं आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उस कमेंट को पढ़ेंगे, और कमेंट में जो बातें कही गई हैं तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो सच में वर्तमान समय के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मुश्किल से 2-3 दिन पहले की ही बात होगी, जो उत्तराखंड के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि अभी आपको मालूम है कि हरिद्वार में मतलब वो कुंभ मेला चल रहा है, और उसमें लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, तो लोगों को ये आशंका है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा जो इसके मापदंड हैं उनका पालन भी नहीं कर रहे होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि वहाँ देश भर से लोग आ रहे हैं और आने के बाद फिर वो अपने अपने स्थानों पर लौट जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कोरोना वायरस के कैरियर बन जाए, ले जाने वाले बन जाए, वाहक बन जाए और पूरे देश में फैल जाए। तो इस तरह की बातें एक वर्ग कर भी रहा है, और वैज्ञानिक दृष्टि से ये सही भी है। अब आप देखिए कि जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं मतलब वो देश के मतलब अपने राज्य के प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रशासक हैं, वो क्या कहते हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि यहां के जल में मां गंगा का आशीर्वाद है, इसलिए कोरोना नहीं होगा। मां का आशीर्वाद है यहां के जल में तो कोरोना नहीं होगा, यानी इससे डरने की कोई बात नहीं है। अब वो ये बात कह रहे हैं, ठीक है, और ये बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं कह रहा है, बल्कि उस राज्य के प्रमुख कह रहे हैं जिस राज्य में ये कुंभ मेला चल रहा है। तो जनता स्वाभाविक है कि उनको फॉलो करेगी, और वैसे भी जो श्रद्धालु मन होता है वो इन चीजों पर ही ज्यादा विश्वास करता है, वैज्ञानिक चीजों को वो नहीं मानता। अब आप देखिए कि आज के अखबारों में आपको एक खबर पढ़ने को मिलेगी, खबर ये मिले कि जो निर्वाणी जो अखाड़ा है उसके जो महामंडलेश्वर थे कपिल देव जी, उनका निधन हो गया, और जो उनका निधन हुआ है वो कोरोना के कारण हुआ है। अब मां का जो आशीर्वाद है क्या इनके ऊपर नहीं रहा, क्योंकि ये तो महामंडलेश्वर थे। और इसके तुरंत बाद देखिए वहां जो निरंजनी अखाड़ा है उसने ये फैसला किया कि 17 अप्रैल को वे लोग कुंभ छोड़ देंगे, मतलब अब कुंभ में नहीं रहेंगे, उनका जो अखाड़ा है वो वहां से चल देगा। लेकिन लास्ट डेट जो इसकी 27 अप्रैल है उसमें एक तरह से कह लीजिए कि सांकेतिक स्नान वो करेंगे। अब आप देखिए कि ये धार्मिक पंथ के लोग हैं, एक धार्मिक लोग हैं, जब मृत्यु हो जा रही है तो फिर वो अखाड़ा छोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री वो ये बात कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। और हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है, जो 51 की मैंने बात की, 51 क, ये मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, और इसके एच में यानी कि हिंदी में उसे कहेंगे ज, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कर्तव्य के रूप में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सभी हमारे नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि आपकी यह ड्यूटी है, तो मुख्यमंत्री की तो सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है। तो अब आप देखिए कि कैसे संविधान के शपथ की बात कही जाती है, संविधान के विरोध में यहां आह्वान किया जाता है, और जो घटनाएं घट रही हैं वो संविधान के अनुकूल घट रही हैं। तो इस तरह के जो विरोधाभास आपको जब दिखाई दे तो आप मान करके चलिए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको 10 मूल कर्तव्यों को रटने की जरूरत नहीं है, समय को देखते हुए या जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं उसके लिहाज से मुझे लगता है कि 51 जो एच की बात कही जा रही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और इस तरह से सिविल सर्विस की तैयारी जो है आपकी थोड़ी सी ज्यादा पुख्ता हो सकती है। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि चूंकि 14 अप्रैल को छुट्टी हो गई थी तो इस सप्ताह को मनाने के लिए केवल हमें 4 दिन ही मिल सके हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, वो ये कि देखिए मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो मेरा कर्तव्य है, या यूं कह लीजिए कि मेरा जो सबसे बड़ा धर्म है जिसे मैं वास्तव में पूरे दिल से मानता हूँ, वह है आप लोगों को सिविल सर्वेंट के लायक बनाना, यानी कि आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकें, इसमें जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें अपना योगदान देना। AFEIS आपके लिए कितना कुछ कर सकता है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं इस विषय पर और ज्यादा बातें की जानी चाहिए, इस बिंदु पर भी बातें की जानी चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, हम इस सप्ताह को और भी एक सप्ताह बढ़ा सकते हैं, या और भी जो दूसरे विषय हैं, मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं हम ज्योग्राफी वीक मनाएं, या हम कॉन्स्टिट्यूशन वीक मनाएं, फलाना फलाना करें, CSET वीक बनाएं, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। आप सजेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपनी उंगली मुझे दिखा रहे हैं कि सर इस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो सकेगा, और वो उसे मैं बिल्कुल शिरोधार्य करूंगा। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि मैंने एक फैसला लिया, हालांकि इसमें आप सबकी भी सहमति थी, मैंने एक फैसला लिया है और बस अब वो फैसला अटल है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता, नया कुछ शुरू नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मायने में मैं बहुत ओपन हूं, आप लोग जैसा चाहेंगे, जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा वैसा ही किया जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम जो भी समय बचा है उसमें जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में, अभी इस सप्ताह जो हम लोग बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक तथ्य आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि सिविल सर्विस प्री को आप केवल इस दम पर क्वालिफाई कर जाएंगे कि आप 52-55% मार्क्स केवल डायरेक्ट सही उत्तर देकर ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं। अपवाद स्वरूप देखिए सभी जगह होते हैं, अच्छे अच्छे जो टॉपर्स हुए हैं आप उनसे जाकर के पूछे कि प्री में आपकी क्या स्थिति थी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आप इरा सिंगल का देखिए, बिल्कुल बॉर्डर मार्क्स थे प्री में उनके। आप टीना डॉबी के देखिए, बिल्कुल बॉर्डर मार्क्स थे। आप गौरव अग्रवाल जी के देखिए, बिल्कुल बॉर्डर मार्क्स थे। प्री में इनके बॉर्डर मार्क्स हैं, लेकिन मेंस में ये टॉपर बन रहे हैं। यानी कि प्री और मेंस की तैयारी दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से होती है, और ये जरूरी नहीं है कि अगर आप प्री में कमजोर हैं तो आप मेंस में भी कमजोर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लोग कर क्या रहे थे, हमें इसे ही समझना पड़ेगा। इन्होंने बहुत अच्छी एक रणनीति अपनाई और उस रणनीति के तहत ये है, क्योंकि जो प्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो फैक्ट बेस्ड उतने नहीं हैं जितने कि अनुमान पर आधारित होते हैं, और जहां अनुमान की गुंजाइश हो, देखिए वहीं पर आपके टैलेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां अनुमान ही नहीं होगा फिर तो सब कुछ रटंत होता है। एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि आपके प्री एग्जामिनेशन में बकायदे निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं कर दिया गया कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं और वह प्रश्न दो नंबर का है तो आपके दो नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि जब आप सही करते हैं तो आपको दो नंबर मिलते हैं, टू मार्क्स मिलते हैं, तो आप गलत करेंगे तो आपके टू मार्क्स काट लिए जाएंगे। यूपीएससी ऐसा भी तो कर सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया? जब आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा इसलिए नहीं किया गया है ताकि आपके दिमाग में ये बात बनी रहे कि नहीं मुझे अनुमान लगाना है, क्योंकि अनुमान लगाने के तहत ये कर दिया गया है कि आप खोएंगे तो 1/3 और पाएंगे तो पूरा, यानी कि आपके अंदर अनुमान लगाने का उत्साह रहेगा, अदरवाइज वो दब करके खत्म हो जाएगा। और वो यही जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने पढ़ा नहीं है लेकिन अनुमान पर आप कितना सही चलते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग मोटा अनाज के बारे में बात कर रहे थे, अब आप देखिए कि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि आप अनुमान लगा करके सही उत्तर तक पहुंचे। ये अनाज जलवायु के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, ये फैक्ट है, क्योंकि मोटा अनाज है, हो सकता है कि इसके बारे में आपने पढ़ा हो, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। हरित क्रांति के बाद इन अनाजों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अब आप देखिए कि आप ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका चैप्टर है, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में ये सबसे ज्यादा आरोप लगाया जाता है कि एक तो ये है कि ये कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, और ये ज्यादातर जो है ना शुरुआत गेहूं से हुई थी, गेहूं और धान तक सीमित रह गया। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और इनका रकबा बढ़ता चला गया, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ती चली गई, तो सीधी सी बात है कि मोटा अनाज का जो उत्पादन था हमारे देश में कम होता चला गया। अब ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के चैप्टर को पढ़ते हुए आपकी मुलाकात ऐसे वाक्य से नहीं हुई हो, लेकिन आपको अनुमान लगाना पड़ेगा और साहस भी जुटाना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। भारत में इसके अंतर्गत मक्के का उत्पादन सबसे अधिक होता है, हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो ये, लेकिन आप देखते हैं कि मक्का कितना अधिक बाजार में बिकता हुआ मिलता है। मक्के दी रोटी सरसों दा साग तो आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन और किसे की रोटी और फलाने का साग सुनने को नहीं मिलेगा। पंजाब तो किसी समय में मक्के के उत्पादन में टॉप पर था। भुट्टे आप कितने खाते हैं, तो यहां आपको अपने दिमाग में ये बात लानी पड़ेगी कि नहीं ये सही हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023, अब आप देखिए कि आपके दिमाग में है कि नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटा अनाज वर्ष तो घोषित किया है, मैंने अखबार में भी पढ़ा था, डेली ऑडियो लेक्चर में भी सुना था, लेकिन यह मामला कहां क्या है मालूम है? अगर मैंने इस 2023 को 2021 कर दिया होता तो क्या आप उसे पकड़ पाते? हो सकता है कि आपको लगे यार 21 है ना कि अभी इसी साल की, बिल्कुल इसको घोषित किया ही है, या 21 पर आप ध्यान ही नहीं जाता, यहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है, अब वर्ष 21 है, 22 है, 23 है, उस पर आपका ध्यान नहीं है, तो इस पर आपका ध्यान कैसे टिकेगा? जब आप इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत से मेल आते हैं कि सर आप जरा सा जल्दी जल्दी बोला कीजिए, या ऑनलाइन क्लासेस में जो आपके लेक्चर्स हैं ना वो थोड़े से अगर फास्ट हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, थोड़ा सा धीरे बोला है आपने तो उसमें समय लगता है। दोस्तों अगर आप समय नहीं लगाएंगे तो इस तरह के संकट से आप लगातार जूझते रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी बातें मैंने अभी जो एक आपको क्वेश्चन दिया था उसके बारे में आपके सामने रखी है। आप मेरी बातों पर विचार कीजिएगा, आप सीधे सीधे सुनकर के मत उड़ा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सीधे सुनकर के उड़ा देंगे तो फिर आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और आप मुझे बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर और भी आगे बातें की जाएं, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक के बाद जो वीक आएगा उसमें हम लोग फिर से इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं, कुसुम जोशी, नांदी रावल, चितरंजन पटेल कैमूर बिहार से, और सोनी सिंह, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों अब दो दिनों के लिए अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।